चरित्रमोक्षम लेक्चर नंबर 10 चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार ढूंढाड़ी भाषा में लिखा हुआ है और ये आपके हाथ में उसका हिंदी अनुवाद है। और यहाँ हम चारित्र मोक्ष उपशमना का प्रकरण देख रहे हैं। हमने देखा था द्वितीय उपशम सहित श्रेणी चढ़ने वाले जीवन की अपेक्षा हमने बात की, अनंतानुबंधी का विसर्जन करके फिर तीन कर्म परिणामों के द्वारा द्वितीय उपशम प्राप्त करके उसके बाद हजारों बार छठादात्र गुणस्थान करके उपशम श्रेणी के सम्मुख होता है, तीन कर्म परिणाम फिर करता है तो सातवें ही गुणस्थान में अधर कर्म यानी अधर प्रवृत्त कर्म होता है, उसी को सातिशय अप्रमत्त कहते हैं। उसके बाद अपूर्व करण जो करण परिणाम है और गुणस्थान का नाम भी यहाँ पर अपूर्व करण गुणस्थान है, वहाँ जो चार बातें होती है वो यहाँ चालू हो जाती है, गुण श्रेणी बनती है। वो गुणश्रेणी का आयाम कितना है, तो अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस सूक्ष्म संप्रदाय प्लस और थोड़ा, वो थोड़ा कितना है, ग्यारहवें का जितना काल है उसके संख्यात्र भाग क्रमण एक स्टॉक उतनी बड़ी गुणश्रेणी बनी, सातों कर्मों में बनी। गुण संक्रमण के बारे में बहुत कुछ कन्फ्यूजन और प्रश्न भी आ रहे हैं, यहाँ गुण संक्रमण भी होता है, किसका होता है, तो जिनका बंधन नहीं पाया जाता ऐसे प्रकृतियों का संक्रमण के लिए भी कंडीशन क्या है कि बंध होने में संक्रमण होता है, बंधने वाले में ही संक्रमण होता है। जैसे उत्कर्षण में बंध की अपेक्षा है, उन्हीं का उत्कर्षण होता है जिनका बंध है, सजातीय का भी ले लेना उसमें। अब जैसे नपुसक वेद का संक्रमण होगा तो उसकी सजातीय, वो तो चारित्र मोह की प्रकृति है, उसकी सजातीय क्या है, पुरुष वेद आदि जो या संज्वलन भी है वहाँ जो बंध रहे हैं उसमें उसका संक्रमण होता है। जो बंद रहे उनका संक्रमण नहीं हो रहा। संक्रमण का अर्थ है एक प्रकृति अपने सजातीय अन्य प्रकृति रूप होना, उसका नाम है संक्रमण। जैसे ज्ञानावरण है वो दर्शनावरण रूप नहीं होगा, उसको संक्रमण में वो ऐसे संक्रमण होता ही नहीं, आयु का भी कभी संक्रमण नहीं होता। सामान्य रूप से ये जैसे हमने देखा था कि क्रोध मान माया लोग इनका आपस में संक्रमण होता रहता है, पर यहाँ तो चारों ही बंधने वाली है, उसका ये गुण संक्रमण नहीं हो रहा। ये गुणित प्रमाण में जो संक्रमण का होने वाला जो प्रमाण है उसके लिए गुण संक्रमण शब्द आता है। जैसे हमने देखा था कि यहाँ कितने परमाणु संक्रमित होते हैं, तो कहते ये सभी निषेक में पड़े, जैसे अपकर्षण कितने परमाणु का होता है तो पर्टिकुलर संख्या से भाग देकर जितनी संख्या आती उसमें का अपकर्षण होता है। ऐसे ही संक्रमण कितने परमाणुओं का होता है तो गुण संक्रमण नाम का एक विशिष्ट वैल्यू है, उस संख्या से भाग देने पर जितना प्रमाण आएगा उतने परमाणु पूरा निषेक टर्न होता नहीं है, पूरी प्रकृति अन्य रूप नहीं हो रही है, उसमें से कुछ परमाणु अन्य प्रकृति रूप हो गए, इसका नाम है वो गुणित प्रमाण में संक्रमित होना। पहले समय में जितना हुआ दूसरे समय में उससे ज़्यादा हुआ तीसरे समय, इसको कहेंगे गुण संक्रमण। तो ये गुण संक्रमण का स्वरूप है। देखो ऐसा गुण संक्रमण कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, ये अपूर्वकरण परिणाम के कारण गुण संक्रमण होता है, परंतु हमने देखा था ये प्रथमोक्षम के अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नहीं हुआ था, प्रथमोक्षम प्राप्त होने के बाद जब औक्षम सम्यक तो शुरू हुआ था तब मिथ्यात्व से गुण संक्रमण होकर सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति आ गई। द्वितीय औक्षम सम्यक में तो गुण संक्रमण हुआ ही नहीं था। जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई थी तो वो गुण संक्रमण के द्वारा अन्य कषाय रूप प्रारंभ हुई थी, पूरा ही पूरा नष्ट हुआ था। तो ये गुण संक्रमण कहाँ कहाँ हो सकते हैं उसकी बात है यहाँ। तो यहाँ पर अभी हमारी श्रेणी की बात चल रही, यहाँ गुण संक्रमण किसका हो रहा है, यहाँ नहीं बंधने वाली जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं वो इस प्रपोर्शन में गुण संक्रमण उसका होगा। वो प्रपोर्शन बताने के लिए गुण संक्रमण शब्द आता है। तो देखो ये जो मैं पंचलब्धि के आधार से आपको बताना चाहती हूँ, वहाँ पर भी ये विषय लिया है गुण संक्रमण का कि जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता उन प्रकृतियों, ये डेफिनेशन मैंने लब्धि सार में से निकाली, अपने मन से नहीं निकाली, कर्मकांड में भी संक्रमण के जो कुछ वेरिएशन थे उसमें भी यही परिभाषा है कि जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता उन प्रकृतियों का जो द्रव्य यानी परमाणु है वह प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से, गुण संक्रमण क्यों हुआ नाम आया, प्रति समय उसका जो प्रमाण है वो असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा होता है, तो प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से जिनका बंध हो रहा है ऐसे स्वजातीय प्रकृति, कोई भी प्रकृति किसी में भी संक्रमित नहीं हो सकती, उसके भी कुछ नियम है। प्रकृति में संक्रमित होता है यानी अपना स्वरूप छोड़कर उन अन्य रूप प्रकृति रूप परिणमता है, इस विधान को, इस प्रोसेस को गुण संक्रमण कहते हैं। इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना गुण संक्रमण कहलाता है। ऐसा गुण संक्रमण श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में होता है। जो हमने अभी देखा गुण संक्रमण की शुरुआत यहाँ होती है, वहाँ असाता वेदनीय प्रकृति का साता वेदनीय प्रकृति रूप संक्रमण होगा क्योंकि असाता नहीं बन रही है, साता बन रही है ना, तो उस रूप उसका संक्रमण भी होगा। अभी हमने देखा अन्नपुसक वेद नहीं बन रहा है, पुरुष वेद और अन्य संवलन बन रहे, उस रूप उसका संक्रमण होगा, गुणित संक्रमण होगा, इसलिए गुण संक्रमण कहते हैं। यानी पूरा का पूरा निषेक संक्रमित होकर नष्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि उपशम तो उसका बनेगा ना आगे चल, नपुसक वेद सत्ता में पड़ा रहेगा ना, तो उसका भी उपशम तो होना है, उपशम तो 21 प्रकृतियों का होना है, फिर भी कुछ परमाणु संक्रमित भी होते रहते हैं और बाकी निषेक तो बड़े पड़े रहते हैं, पूरा का पूरा नष्ट नहीं हो रहा है। जैसे अनंतानुबंधी के विषय योजन में पूरा का पूरा नष्ट हुआ था वैसा यहाँ नहीं बन रहा है, कुछ परमाणु संक्रमित हो गए, कुछ तो उपशमित हो गए, ये सब प्रोसेसेस चलेंगे आगे। तो ऐसा संक्रमण यहाँ शुरू होता है अपूर्वकरण गुण स्थान से। किसमें एक गुण संक्रमण का अर्थ होता है गुणित प्रमाण में संक्रमण, उसको गुण संक्रमण कहते हैं। गुणों में संक्रमण होने का सवाल कहाँ है, गुण तो द्रव्य में नित्य तादाद में रूप से रहते हैं, वो एक गुण दूसरे गुण रूप होना उसको गुण संक्रमण नहीं कहते, ये जरा अच्छा क्या आपने पूछा। कोई एक गुण दूसरे गुण रूप होने का सवाल ही नहीं है, ये तो गुणों की स्वतंत्रता है, वहाँ कोई ऐसा संक्रमण नहीं समझना कि गुणों का संक्रमण हो रहा है, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ गुण का अर्थ होते गुणित प्रमाण, एक समय में जितने परमाणु संक्रमित हुए दूसरे समय में उससे अधिक परमाणु, जैसे उपशम होते होते क्या हुआ था, पहली खाली जो पहले समय में जितने उपशमित हुए थे दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा उपशमित हुए, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा उपशमित हुए, इस तरह यहाँ संक्रमण होते समय भी पहले समय में जितना संक्रमण हुआ दूसरे समय में और ज़्यादा हुआ, तीसरे समय में और ज़्यादा हुआ, इसको गुण संक्रमण कहेंगे। और वो कितने प्रमाण कैसे निकालना, वैल्यू कैसे निकालना, तो गुण संक्रमण नाम का जो एक भागार का प्रमाण है उतने परमाणु संक्रमित होते हैं, इसलिए इसका नाम है गुण संक्रमण। क्या 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 कहाँ बैठे हो, हाँ बोलो। आप क्यों घोटाला कर रहे हैं? हमने अभी बताया गुणों में संक्रमण नहीं होता, आप कहेंगे पर्याय में संक्रमण होगा, कह कह रहे मध्य ज्ञान का शुद्ध ज्ञान में संक्रमण होगा, ये एक सवाल कहाँ से पैदा होता है भैया? यहाँ क्या कर्म प्रकृतियों की बात चल रही है और उनमें संक्रमण हो रहा है, ज्ञानावरण में होगा कैसे? अभी मति ज्ञान की बात छोड़ो, मति ज्ञानावरण में संक्रमण होगा कि नहीं होगा? गुणित प्रमाण में कैसे होगा? नहीं बंधने वाली की, ये बंधने वाली है कि नहीं बंधने वाली है? ज्ञानावरण का बंध तो दसवें गुण स्थान तक होता है, हाँ उसमें भी संक्रमण चलता है पांचों प्रकृतियों का आपस में, उसका नाम अलग है। अब उसके डिटेल में मत जाओ क्योंकि वो संक्रमण का पूरा विषय, वो पूरी संक्रमण के ऊपर एक पुस्तक है, पढ़ना उसको। या कर्मकांड के लास्ट में वो संक्रमण भागार की जो चूली का है ना, संक्रमण पांच प्रकार के संक्रमण, तो कौन से प्रकृतियों में कौन कौन से संक्रमण होते हैं उसकी चर्चा है। अपना विषय यहाँ क्या है, अपूर्व करण में कौन कौन से प्रोसेस यहाँ नए शुरू हुए हैं। तो कहते हैं गुण श्रेणी होती है, गुण संक्रमण शुरू होने लगता है यहाँ पर, और फिर स्थिति कांडक घात होता है और अनुभाव कांडक घात होता है। ना गुणों में कोई संक्रमण होता है, ना पर्यायों में कोई संक्रमण होता है, ये नहीं बंधने वाली जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं उनका बंधने वाली स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमण होना, उसको यहाँ संक्रमण कहा, और उसकी जो वैल्यू है कितने प्रमाण में होती है, इसलिए उसका नाम है गुण संक्रमण। गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, क्यों सुधीर जी गुण संक्रमण की बात ख्याल में आई ना? हाँ आगे बढ़ो। देखो ये हमारे सारे विद्वान हैं और ये इतने और उनका भी अभ्यास बहुत अच्छा है और वहाँ पढ़ाते भी हैं, तो इनके प्रश्नों के लिए हम इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये बातें अगर ख्याल में आती है तो और इसका यानी वो भी और विस्तार से समझा सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन रहे तो हम वो बात अच्छी तरह से पकड़ में नहीं आती अपनी, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ये हम चाहते हैं, क्योंकि ये विषय इतना कठिन है, ये नाम ही हमारे पहले ख्याल में नहीं आते, तो वो प्रोसेस क्या हो रहा है वो हम इमेजिन नहीं कर सकते उसको, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ देखते देखो पेज नंबर 162 पर हम आ गए हैं। ये हो गया ना 163 पर आए थे, हाँ अभी 225 की टीका हमको पढ़नी है। अपूर्व करण में ये चार बातें चालू हो गई, आठवां गुण स्थान है, तो यहाँ और भी कुछ बातें विशेष होती है क्या? यानी जो सातवें में थी उससे यहाँ आठवें में क्या विशेष बातें हुई? जो प्रकृति सातवें में बनती थी क्या वो यहाँ बंधेगी कि नहीं बंधेगी? सातवें में कौन सी प्रकृति की बंध विच्युति हुई जो यहाँ नहीं बंधेगी अभी? आयु वहाँ पर भी नहीं बनती थी क्योंकि अधकरण में वहाँ भी नहीं बनती थी, इसलिए कोई सवाल नहीं हुआ, जितना उतने बनती थी उतनी यहाँ शुरुआत में बंधेगी, यह तो बात नक्की हुई ना। अब यहाँ कहती कि यहाँ क्या विशेषता होती है बंधन में, तभी ये आठवें गुणस्थान का जो काल है उसके हम सात भाग करेंगे। तो पहले भाग के अंत में कुछ प्रकृतियाँ अभी यहाँ बंधना रुक जाएंगी, उसको कहेंगे उसकी बंधकी विच्छिप्ति हुई, इसको कहते हैं पहले भाग में बंधकी विच्छिप्ति हुई। तो ऐसी कौन सी प्रकृतियाँ हैं कि यहाँ बंधना रुक जाती है? निद्रा और प्रचला, क्योंकि अभी तक यहाँ तो इन जीवों को दर्शनावरण की छह प्रकृतियाँ बंधी थी, कौन सी छह? निद्रा प्रचला चक्षु दर्शनावरण चक्षु दर्शना अवधि दर्शनावरण केवल दर्शनावरण, अभी निद्रा प्रचला का बंध यहाँ रुक जाए तो दर्शनावरण की चार ही इसके आगे बंधेगी, बंध की बात हो गई। तो आठवें गुणस्थान के पहले भाग में निद्रा और प्रचला दो प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हुई, यहाँ तक बनती थी आगे वो नहीं बंधेगी। अब उसके बाद छठे भाग तक और जो कोई अन्य देवगति के साथ जो प्रकृतियाँ बन रही थी उसमें से यश कीर्ति को छोड़कर अन्य शेष प्रकृतियाँ बंधना रुक जाए तो हम कहेंगे उसकी बंध विच्छित्ति हुई, जिसको कहते हैं 30 प्रकृतियों की बंध की विच्छित्ति होती है। यानी हमने आठवें गुणस्थान के सात भाग किए, पहले भाग के अंत तक निद्रा प्रचला बनती थी आगे नहीं बंधेगी, अन्य जो 31 बनती थी उसमें से ये 30 प्रकृतियों के बंधे विच्छेद होती है, और बाद में लास्ट में यानी वो नाम कर्म संबंधी जो है, और लास्ट में अंतिम भागिनी सात आठवें के अंत तक कौन सी वो हास्य रति वह जुगुप्सा बनती थी, अब उसका बंध रुक जाएगा यानी वो नवे गुण स्थान में वो नहीं बंधेगी, तो उसको कहेंगे उसकी बंध विच्छेद हुई। इसका अर्थ आठवें गुण स्थान में टोटल कितनी, हाँ 2 + 3 = 30 + 4 36 प्रकृतियाँ जो बंद रही थी उनकी बंद की विच्छित्ति हो जाएगी, यानी इतना बंद एकदम कट हो जाएगा ऊपर वो प्रकृतियों का बंद रुक जाएगा। ख्याल में आई बात, उदय में भी कुछ विच्छित्ति होती है क्या? तो कोई कहते हैं विच्छित्ति विच्छित्ति क्या बात है, तो जिस गुणस्थान में जो बंध योग्य प्रकृतियां है वो उस गुणस्थान में बनती ऊपर के गुणस्थान में नहीं बनती, तो उनको कहेंगे उस गुणस्थान में उसकी बंध विच्छित्ति हुई। जैसे हमने बंध विच्छित्ति की बातें देखी थी वैसे उदय में भी विच्छित्ति होती रहती है। हाँ, प्रत्येक गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियां कहाँ उदय रूप है उसके भी नियम है। जैसे हमने पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति देखी, वैसे उदय की भी विच्छित्ति होती है कहाँ, हाँ वहाँ पर वह मिथ्यात्व है, आतप है, सूक्ष्म है, पर्याप्त है, साधारण है, और फिर वो एक बिंदी तीनजी वगैरह जो है इनका सारे का उदय भी पहले गुणस्थान वालों के लिए है, ऊपर कहीं उसका उदय नहीं है, तो उसको कहेंगे इसकी उदय की विच्छित्ति यहाँ। अनंतानुबंधी का उदय दूसरे तक ही है, ऊपर उसका उदय नहीं है, उसकी उदय की विच्छित्ति दूसरे में नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे में ही है, ऊपर कहीं नहीं है, उसकी उदय विच्छित्ति तीसरे में हुई। चौथे वालों में कितने प्रकृतियों की उदय की विच्छित्ति होती है, याद है कि भूलिए? 17 बहुत अच्छा, याद है आपको 17 इतना तो याद है, बहुत अच्छा लिखा है क्या आपके पास? हाँ, प्रत्याख्यान के 4 देखो, देव संबंधी सभी प्रकृतियां गिना, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रेक वैक्रेकानुपूर्वी, नरकायु देवायु सब आ गए। फिर अन्य दो अनुपूर्वी लेना, मनुष्यानुपूर्वी तिर्यचानुपूर्वी और हाँ दुर्बल अनार्य अयशस्वी, ये प्रकृतियां अभी इसके आगे उदय रूप नहीं रही, इसको कहते उदय की विच्छित। ध्यान में, पांचवें गुणस्थान में क्या होता है, वहां अपने चौथे में हाँ बराबर होता है। पांचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण का उदय पांचवें तक ही है, और किसका उदय पांचवें तक है, तीर्यंच आयु, तीर्यंच गति है, उद्योग है, नीच गोत्र है, इन सबका उदय पांचवें तक है, आगे नहीं है, तो उसको कहेंगे उसकी उदय की विच्छित्ति हुई। छठे गुणस्थान में किसकी उदय की विच्छित्ति, जो छठे गुणस्थान तक ही उदय है आगे नहीं है, जैसे आहार दो का छठे में ही है आगे तो है नहीं, उसकी भी उदय विच्छित्ति हुई। और स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, ये 3 निद्राएं हैं, उसका उदय भी छठे तक आगे नहीं है, तो उसकी भी उदय की विच्छित्ति हुई। सातवें गुणस्थान में किसकी उदय की विच्छित्ति हुई, नीचे के 3 शयन और सम्यक प्रकृति, उनका उदय सातवें तक है आगे नहीं है, तो उसकी उदय की विच्छित्ति हुई। अब हम आठवें में आए ना, आठवें गुणस्थान में भी किसी उदय की विच्छित्ति होती है क्या, हाँ हास्य विच्छेदोपशम, वेदों को छोड़ो, हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा, इनका उदय आठवें के अंत तक ही है, ऊपर कहीं पर नहीं है, इसको कहेंगे ये आठवें गुणस्थान की उदय विच्छित्ति। वैसे नवे गुणस्थान में 3 वेद और 3 संज्वलन, उसकी उदय विच्छित्ति होती है। दसवें में 1 सूक्ष्म साम्राज्य लोक का उदय, उसकी उदय विच्छित्ति होती है। बारहवें गुणस्थान में 5 ज्ञानावरण है, 6 दर्शनावरण है, 5 अंतरा है, इनके उदय की विच्छित्ति होती है। इस तरह से वो आगे उसकी बताया जाए उदय की विच्छित्ति, आगे के गुणस्थानों में हम बाद में देखेंगे, अभी तो अपना अपूर्व कर्म का विषय चल रहा है। तो यहाँ बंध की विच्छित्ति किसकी हुई, देखो हमने 225 की टीका में अपूर्वकरण काल के 7 भागों में से प्रथम भाग में निद्रा प्रचला 2, छठवें भाग में तीर्थंकर आदि 30। ये तीर्थंकर आदि 30 कौन बताना चाहते हैं, छोटा है किसी को भी बताना है, बताना चाहते हैं, हाँ बोलो बोलो, हाँ तीर्थंकर निर्माण और प्रशस्त रिहाय, ये जो बता रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। हाँ पंचेंद्रिय जाति, देखो ऐसा कहना पंचेंद्रिय जाति विक्रम से चल, देवगति बांध रहे ना, देवगति देवगति का देवगति के साथ वैकरिक वैकरिक अंगों का बांध रहा है, कोई आहारक अंगहारक अंगों का भी बांध रहा है, तेजस कारमा तो बनते ही है सबके, और फिर समचतुर संस्थान बांध रहा है, अग्र लघु उपघात परघात उच्छ्वास बांध रहा है, वर्ण रस गंध स्पर्श बांध रहा है, फिर त्रस बाधक पर्याप्त प्रत्यय बांध रहा है, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि यश कीर्ति बांध रहा था, पर वो तो बंध चलता रहे आगे चल रहे, उसकी विच्छित्ति नहीं होगी। इस तरह से इन 30 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति यहाँ पर होगी। अब कहेंगे जो तीर्थंकर बांध रहा है उसकी बंध विच्छित्ति कहेंगे, जो नहीं बांध रहा है उसका सवाल नहीं है, पर मैक्सिमम कितने यहाँ बंध विच्छित्ति हो सकती है यहाँ इसका प्रकरण चल। और अंत में आठवें के अंत में हास्याभिचारण, हास्य रति भय और जुगुप्सा, इनका बंध होता था अभी इनका बंध रुक जाएगा, इसको कहेंगे बंध की विच्छित्ति हुई। देखो मोक्ष मार्ग में है जीव, अपना स्वरूप का ही अनुभव कर रहा है, वो तो आनंद में मग्न है, और यहाँ कर्मों में अपने आप ये सब बातें हो रही हैं। कितनी प्रकृतियों का बंध यहाँ कितना रुक गया, देखो 36 प्रकृतियाँ बंधने से रुक गई यहाँ, जितना बंध की विच्छित्ति उतना संवर बढ़ रहा है ना उसका ऊपर। समय तो होते समय मनुष्य को ही कितने 46 प्रकृति होंगे, तो बंध रुक गया था उसका, वो 41 और वो 47 की। तो इस तरह से ये तो कितने ही प्रकृतियों का उदय रुक गया, अभी हमने देखा था जितनी अप्रशस्त प्रकृतियां बांधी है, सत्ता में भी पड़ी है, जितना पाप किया है पहले, अभी उसका उदय नहीं होने वाला है, वो जो कुछ उसका अन्य रूप से होना है परिणाम होना है वो तो होता रहेगा। यानी जीव को यही डर रहता है क्या करे, अभी हमने अभी अभी सीखा है, अभी तक हमने बहुत सारा पाप किया है, पूर्व भूमि में न जाने क्या क्या करके आए यहाँ पर, तो उसका क्या होगा, उसकी चिंता छोड़ दो। अब अपने स्वभाव को देखो, स्वभाव में आनंद भरा पड़ा है, उसको देखो हम कहाँ देख रहे हैं, हमको रोने की आदत पड़ी है ना, इसलिए राग में तन्मय होकर रहे हैं, ये स्वभाव की ओर देखने की फुर्सत नहीं है। देखो ये अभी आगे बढ़ते हैं 226, ये अपूर्वकरण की बात पूर्ण हो गई यहाँ पे, अभी अनिवृत्तिकरण नौवां पुनर्स्थान शुरू होगा, लगाए ना बात। हाँ तो ये अभी तक जो अधकर्म में चार बातें शुरू हुई थी, अपूर्वकरण में और एक्स्ट्रा चार बातें हुई थी, वो तो सभी यहाँ चल ही रही है, यानी आठों ही बातें चल ही रहे हैं, और यहाँ आते ही और क्या नई विशेषताएं होती है जो अनिवृत्तिकरण परिणामों के कारण होती है, तो यहाँ कहते हैं देखते हैं पेज नंबर 163 226 की टीका। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अपूर्वकरण के अंत समय संबंधी से अन्य ही प्रमाण वाले स्थिति खंड, क्योंकि वहाँ स्थिति इतनी घटाई है, अब यहाँ पर भी नया स्थिति कांड चालू हो जाएगा, उसका प्रमाण कुछ अन्य बात हो जाएगी, अन्य ही स्थिति बंद होगा, स्थिति बंद घटते घटते यहाँ पर भी और घटकर नया स्थिति बंद होने लगा, स्थिति बंधापसरण और अनुभाग खंड प्रारंभ हो गया, यानी वो बात तो चल ही रही, वो सारे प्रोसेस नए नए चल ही रहे यहाँ पर भी। वहीं पर सभी कर्मों के, किसके बताए, सभी कर्मों के उपशम निदत्य और निकाचन, इन तीन कर्मों की विच्छित्ति होगी। देखो इस वाक्य का अर्थ अभी हमको समझना है, हमने सुबह देखा था ये उपशांत कर्म होता है, सभी कर्मों में ऐसे कुछ परमाणु होते हैं जो अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण होते हैं, पर उदीर्ण होकर वो उदयावली में नहीं आते, उसको कहेंगे वो उपशांत है, उपशम वाले कर्म है, वो उपशांत है। कोई कर्म ऐसे, कोई परमाणु ऐसे होते हैं कि अपने निषेक छोड़कर वो उसका संक्रमण नहीं होता है और ना ही उदीर्ण होती है, उसको हमने निष्काचित निदत्ति कहा था। और कुछ परमाणु ऐसे है ना उनका आकर्षण होता है, ना उत्कर्षण होता है, ना संक्रमण होता है, ना उदीर्ण होता है, क्या होता है, अपने निषेक में बैठे रहते हैं, तो उसको कहा निकाचन। ये जो पोजीशन थी अभी इसमें जो निकाचकपना है, निरक्तिपना है, उपशांतपना है, वो निकल जाता है, वो नष्ट हो जाता है। यानी क्या होता है, वो सभी परमाणु अपकर्षण भी हो गए, उसमें संक्रमण भी होगा, और उसमें वो उदयावली में भी आ जाएगी, उसका खिलना भी। यानी ये जो तीन कर्मों की जो तीन रूप अवस्था थी वो यहाँ नष्ट हो गई, उसको कहेंगे उसकी विच्छुति हो गई। हाँ, वापस जो श्रेणी चल के नीचे आएगा तो अनिवृत्तिकरण के पश्चात अपूर्व कर्म में उल्टा लौट के आएगा, तो ये तीनों ही बातें चालू हो जाएगी फिर दोबारा। अभी तो ये जो तीन करण, देखो करण शब्द अनेक बार आता है, ये अधकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, उसको भी करण कहते हैं। और जो कर्मों की दस अवस्था है उसको भी दस करण कहते हैं। कौन से? बंध, सत्ता, उदय, उदीर्ण, उषम, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, ये निधत्ति निकाल, ये सब इसको भी दस करण कहते हैं। तभी इन करणों की बात है। ये जो तीन प्रकार के करण है, कौन से? उषम करण या उषांत वाला जो है वो, निधत्ति वाला और निकाचित वाला, ये अभी नहीं रहते परमाणु में। यानी सभी प्रकृतियों में सभी अवस्थाएं होती हैं। कुछ परमाणु में नहीं होती थी अब तक, उनमें भी होने लगेंगी, क्योंकि ये स्थिति कांडक होने हैं। अभी इतनी असंख्या गुणा निर्जरा, ये उदीर्णा भी होने वाली, ये सब बातें तभी पॉसिबल है जब उनमें से ये नष्ट हो जाते, तभी बन सकते हैं। अब देखिए इसमें तो फिर ये वाक्य पढ़ती हूँ, वही तीसरी लाइन पर, वहीं पर सभी कर्मों में ये अनिवृत्तिकरण नाम के जो जीव के परिणाम है अत्यंत विशुद्धि वाले, उसके निमित्त से ये बातें बनती हैं। शास्त्र में तो ऐसा कथन आता है कि जिनबिंब दर्शन से ये निदत्ति निकाचित वाले वो नष्ट हो जाते हैं। उसका जिनबिंब दर्शन तभी कहेंगे जब वो अनिवृत्तिकरण जैसे परिणाम होंगे, तभी उन्होंने जिनबिंब दर्शन किया ऐसा कहेंगे। केवल वहां मूर्ति को देखा और इसका यह कर्म निश्चय हो गया, ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि हम तो उसी को कहते ना। अरे निज दर्शन बिना जिन दर्शन नहीं होगा, उसको तो जिन दर्शन कहेंगे भी नहीं, और उसमें ये ऐसे वाले परिणाम होंगे तभी वो निधत्ति निकाचन पर नष्ट हो जाएगा। जहां जहां अनिवृत्तिकरण होता है, अभी जो समय दर्शन होता है वहां पर भी अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम है, तो वहाँ कुछ कर्मों में होगा, वो मिथ्यात्वादी कर्मों में वहाँ पर भी होगा, तभी वो गुण संक्रमण वगैरह जो है उदीर्णा, वो तभी पॉसिबल है जब ऐसे परिणाम होते हैं। उदय में प्राप्तों के अयोग्य उसे उपशम कहते हैं, वो हमने अलग भूमिका में पढ़े थे इस तरह। संक्रमण में प्राप्त करने के अयोग्य उसे निधत्ति कहते हैं। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदय में प्राप्त करने के अयोग्य उसे निकांचना कहते हैं। यहाँ सर्व कर्मों के उदयादि में निक्षेपण करने का समर्थपना पाया जाता है ऐसा जानना। यानी अभी कुछ परमाणु आते थे, कुछ में वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, अभी सभी कर्मों में, सभी परमाणुओं में ऐसी योग्यता होती है, वो अपनी जगह छोड़कर वो उसकी उदीर्णा वगैरह हो सकती है, अपकर्षण, संक्रमण तक हो सकता है, ये इसका अर्थ है। अभी 227 की टीका। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में आयु बिना सात प्रकृतियों का स्थिति सत्व, स्थिति सत्व यानी सत्ता में जो उसकी स्थिति बनी, जो निषेकों की संख्या जो है उसको बताया। स्थिति सत्व, स्थिति बंधे ने नया बंधने वाला, स्थिति सत्व यानी जो सत्ता में पड़ा हुआ है उसकी स्थिति कितनी है, तो कहते यथा योग्य अंत कोड़ा कोड़ी सागर नाम। यथा योग्य क्यों कहा? क्योंकि अभी इतने कांडक घात हुए हैं, स्थिति घटी है, फिर भी वो कम भी है, फिर भी उसका प्रमाण कितना है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। और स्थिति बंद अंत कोड़ी सागर, क्या इसमें डिफरेंस क्या हुआ? एक अंत कोड़ा कोड़ी बताया, एक अंत कोड़ी, अंत कोड़ा कोड़ी यानी लेस देन कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी का अर्थ समझते हैं? और दस कोड़ा कोड़ी है, यही अभी कहाँ हमारे बहन ने ये प्रश्न पूछा था। एक कोड़ा कोड़ी है करोड़ गुना करोड़, और दस कोड़ा कोड़ी है दस करोड़ इंटू एक करोड़, दस करोड़ गुना दस करोड़ तो सौ कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। अंत है ने लेस देन कम, अंत है उसके अंदर की संख्या, अंत कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ गुना करोड़ सागर वर्षों से कम स्थिति, उसको कहेंगे अंत कोड़ा कोड़ी सागर। और अंत कोड़ी है करोड़ सागर से कम, उसको अंत कोड़ी कहेंगे। यानी बंद कितना है, अंतर कोड़ी सा नया जो बंद थोड़ा जगह में उत्कृष्ट, पर उसका सामान्य कथन क्या है, उसका नाम क्या, अंतर कोड़ी और अंतर कोड़ा
नहीं,
नहीं बंद में कोई नया डिफरेंस नहीं पड़ेगा, यहाँ बंद नहीं, अंत कोटिष्ट चाहिए। कहां पर देख रहे हो, शुरू में, हाँ अंत कोड़ा कोड़ी, हाँ संख्या का भाग है उसको अंत कोड़ी कहें, अंत कोड़ी कहना यहाँ किसी भी प्रकृति के अंतर्मूल प्रमाण स्थिति नहीं बनना। ये अंतर्मूल प्रमाण स्थिति किसकी बन सकती है, कब बन सकती है, दसवें गुणस्थान के या ज्ञानावरण वगैरह जहाँ बनता है वहाँ वो अंतर्मूल, यहाँ नहीं। यहाँ जो शुरू में लिखा है ना अंतर कोड़ा कोड़ी, वो कोड़ा कोड़ा को निकाला है वहाँ से, अंतर कोड़ी सा वो कोड़ा को वहाँ से स्ट्राइक किया है, अंतकोड़ी प्रमाण, अंतकोड़ी सागर। अब ये स्थिति भी सत्व, स्थिति सत्व नहीं घटेगा यहाँ, जैसे हमने देखा था अनंतानुबंधी का सत्व घट गया था, आपको याद होगा तो विसंयोजना में सत्ता में जो थे वो खड्डम होते थे, उसको कहेंगे सत्व घट गया था। यहाँ सत्व घटेगा क्या, उपशम श्रेणी में सत्ता तो बनी रहेगी, तो जहाँ अनंतानुबंधी वो सत्व कटडाउन हुआ था वैसे यहाँ नहीं होने वाला है, सत्व तो बना रहेगा, बंध कम होता चला जाएगा, यहाँ स्थिति बंध घटते चला जाएगा। वहाँ हमने स्थिति सत्व के चार पर्व देखे थे आपको याद होगा, अब यहाँ स्थिति बंध के पर्व के लिए हमें बंध के सत्व के नहीं, समझ में, जहाँ क्षायिक समय दर्शन होना है वहाँ सत्व के खंड करने, सत्व के पर्व करेंगे, सत्व घटेगा। जहाँ जहाँ किसी प्रकृति का क्षय या जो विसंयोजना होती है वहाँ सत्व कटडाउन होता है, और यहाँ पर बात किसकी है, बंध एकदम घटेगा, सत्व तो बना रहेगा, जो अंत कोड़ा कोड़ी सागर सत्व है वो तो सत्ता में पड़ा रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होने वाली। स्थिति कांडक घात होने से इतना नहीं कटेगा जैसा उसको एकदम कम हो जाए, कांडक घात तो होगी, और जितनी स्थिति कम होगी तो कांडक का प्रमाण भी छोटा छोटा होगा। वहां क्या हो रहा था अनंतानुबंधी में, कांडक भी बड़े बड़े हो रहे थे, वहां तो बड़े बड़े कांडकों के द्वारा स्थिति एकदम कट डाउन हो रही है ना, यानी वहां स्थिति घटने पर भी कांडक बड़े हो रहे हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। देखो अभी यहाँ हम पढ़ेंगे, स्थिति बंधापसरण बताए यहाँ पर, यहाँ स्थिति बंधापसरण को पहले बता रहे, यानी बंध का घटना हो रहा, स्थिति बंधापसरण ने स्थिति का बंध कैसे घटते चला जाएगा इसका यहाँ वर्णन है। कौन से कर्मों की स्थिति का बंध घटेगा, हाँ सभी सभी कर्म, सभी कर्मों का स्थिति बंध घटते चला जाएगा, जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहाँ स्थिति बंध अल्प अल्प होता चला। अब वही यहाँ बता रहे हैं, अभी तक तो स्थिति बंध घटते ही चला गया था, परंतु तो अभी और फास्ट घटेगा और बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है, अब आगे अभी दसवें में गए हो तो और भी कितना कम होगा, अंतर्मूल प्रमाण लास्ट में स्थिति बंधेगी ज्ञानावरण आदि, यानी यहाँ स्थिति बंध कितना फास्ट घट रहा है उसका अंदाजा लेंगे, इसलिए इसका खास इसका नाम है स्थिति बंधावसर। ये जो आठ नाम आपने देखे थे ना, देखो चार नंबर आपको दिखाना है, दो नंबर का चार था उसमें आधा प्रवृत्त बताया, वो हमने देख लिया, अपूर्वकरण देख लिया, अनिवृत्तिकरण की स्टार्टिंग हो गई है, ये अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में ही क्या क्या हो रही बातें, यहाँ का जो स्थिति बंधापसरण है और कितना घट रहा है उसकी बात यहाँ मुख्यतः से बता रहा है। ये स्थिति बंधापसरण का अभी वर्णन कर रहे हैं पेज नंबर 164 पर, इस स्थिति बंधावसरण का वर्णन 228 नंबर की गाथा की टीका में हम देखें, देखो पढ़ेंगे वहां से, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय से लेकर एक एक अंतर्मूर्त में पल्ले के संख्यात्वे भाग मात्र स्थितिबंधक घटे, ऐसे स्थितिबंधा प्रसरण, यानी एक बार स्थितिबंध घटने पर अंतर्मूल तक उतनी की उतनी स्थिति का बंध होता है, फिर अंतर्मूल के बाद वो कटौती होती है, फिर उतना घटा हुआ स्थितिबंध उतना अंतर्मूल में चलेगा। जैसे अनुभाग बंध प्रति समय अनंत गुना घटता है, ऐसा स्थिति में नहीं होता। भले विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणी बढ़ रही है, स्थिति बंध अंतर्मूल तक उतना का उतना रहेगा, बाद में कटौती होगी, फिर उतना का उतना रहेगा, फिर कटौती होगी, ये स्थिति बंध की विशेषता है। तो वो कटौती कितनी होती है, तो कहते पल्ले के संख्यात विभाग में ऐसे स्थिति बंधापसरण के क्रम से हजारों स्थिति बंध होने, यानी हजारों बार ऐसा घटना घटना चलने पर अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात भागों में से बहुभाग व्यतीत होकर एक भाग अवशेष रहने पर, यानी अभी करते 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 स्थिति कितनी रह जाएगी, तो असंगी के स्थिति बंध के समान स्थिति बंध होता है। जब हमने अनंतानुबंधि की विषय में ना देखी थी, वहां ये देखा असंगी के बंध के समान स्थिति सत्व होता है, उसका सत्व घटा था, यहाँ सत्व नहीं घट रहा, यहाँ तो केवल बंध घट रहा है। उपशम श्रेणी में कोई सत्ता में से नाश नहीं होने वाला किसी प्रकृति का, उसका सत्व भले उसकी स्थिति थोड़ी बहुत कट जाएगी, यानी स्थिति कांड घात के द्वारा थोड़ी स्थिति कम हो जाएगी, परंतु ऐसी कम नहीं होगी कि उसका सत्ता में से नाश हो जाए। हाँ, परंतु बंध उसका अत्यंत हीन हो रहा है, यानी इतना पहले अंत कोड़ा कोड़ी का बंध था, फिर अंत कोड़ी प्रमाण हो गया, अभी और कटते 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 कितना हो जाएगा, तो कहते हजार सागर जितना बंध होगा। तो कहते असंगी के स्थितिबंध के समान स्थितिबंध होता है। अभी ये असंगी के समान जब कहते हैं, तो सभी कर्मों में तो समान स्थितिबंध नहीं होगा। जितना ज्ञानावरण में होता है, क्या उतना ही दर्शन इसमें हो जाएगा नाम और गोत्र में? तो उसका अनुपात यानी प्रपोर्शन अलग अलग होगा। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व का बंध 70 कोड़ा कोड़ी का करता था, तो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध 30 कोड़ा कोड़ी का करता था। यानी मिथ्यात्व के प्रपोर्शन में अगर हम देखेंगे, जैसे असंगी पंचेंद्रिय जीव मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध 1000 सागर करता है, तो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध कितना करेगा? वहां 70:30, तो 1000:30 कितना, तो 1000 का 3/7 में त्रैराशिक है, 1000 सागर का 3/7 इतना ज्ञानावरण का बंध होगा, और 1000 का 2/7 इतना नाम गोत्र का बंध होगा। जो कर्म मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर बनता है, उसी का ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और वेदनीय का उत्कृष्ट बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर बनता है, उन कर्मों को तीसीय कर्म कहते हैं। नाम और गोत्र का उत्कृष्ट बंध है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, उनका नाम है द्वितीय। चारित्र मौनीय 40 कोड़ा कोड़ी सागर के बनते हैं, उसका नाम है 40। तो ये बीसीय तीसीय और 40, इनका प्रपोर्शन आगे भी बंध में ऐसा ही रहेगा। 70 कोड़ा कोड़ी का यहाँ बंध ही नहीं होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का बंध ही नहीं यहाँ पर, परंतु वो तो मोहनी का बंध है, मोहनी यहाँ का मोहनी कौन है? संज्वलन बंध रहा है, तो वो 40 के प्रपोर्शन में वो बंधेगा। यानी मान लेते नाम गोत्र का अगर हम देखेंगे, पल्ले प्रमाण जहाँ बंध होगा, पल्ले प्रमाण, तो उसे 2 गुना मोहनी का होगा, और 1.5 गुना यानी 20 के 30 प्रपोर्शन में 1.5 गुना ज्ञानावरणादि का बंध होगा, ये प्रपोर्शन उसका कायम रहेगा। अभी ये बात यहाँ समझेंगे हम, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ बताइए हो असंगी के 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति के धारक दर्शन मोह का यानी मिथ्यात्व का 1000 सागर स्थिति बंध है, उसका प्रतिभाग करके 1000 सागर को 7 का भाग देकर वहां 1 भाग से 2 गुना द्वितीय का, यानी 7 का भाग देना और 2 से गुणा करना है, इसका अर्थ है 2/7 से गुणा करना, 1000 का 2/7, 3 गुना द्वितीय का। द्वितीय किसको कहा? जिन जिन की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, उन कर्मों का नाम ही द्वितीय कर्म है। जैसे ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है और वेदनीय है। आप कहेंगे यहाँ तो 7 वेदनीय बन रहा है, सातावेदनीय का उत्कृष्ट बंधन तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर ही होता है, पर वेदनीय इन जनरल उसका कितना होता है, भले वो असात है वो 30 कोड़ा, तो यहाँ उसका भले साता है पर उसका ही किसी के प्रपोर्शन में बंद होगा, उसका वो 15 वाला अलग से नहीं बंद होगा। चार गुणा चारित्र मुनि का स्थिति बंद होता है, जो 40 कर्म कहेंगे इसको, जिनकी उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, ऐसे नाम और गोत्र कर्म को 20 कहते हैं। यहाँ नाम और गोत्र बंद रहा है कि नहीं बंद रहा है नवे गुण स्थान में? कौन सा नाम कर्म बंद रहा है? अकेला यशस कीर्ति बंद है, बाकी सब बंद विच्छित हो गई है, गोत्र में उच्च गोत्र बन रहा है, तो वो 20 कहेंगे उसको। जिनकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय वेदनीय कर्मों को 30 कहते हैं। जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, ऐसे चारित्र मोह को 40 कहते हैं। ऐसी संज्ञाएं आगे भी जान लेना। वो 40 कोड़ा कोड़ी का बंद तो मिथ्या दृष्टिकोण था। आप कहेंगे यहाँ कहाँ इतना बंद हो रहा है, हम तो कोड़ा कोड़ी तो बंद रहे थे संज्वलन वगैरह, उसके बाद नहीं, उसको 40 नाम है तो वहाँ उस प्रपोर्शन में उसका बंद होगा। असंगी पंचेंद्रिय, इसलिए क्योंकि 1000 सागर बताना था। असंगी के योग्य स्थिति बंद कितना, असंगी जीव कितना स्थिति बंद करता है? 1000 सागर। 1000 सागर किसका? दर्शन मोनी का। असंगी जीव ज्ञानावरण का बंद कितना करेगा? 1000 का 3 सप्तमांश। तो अभी ये जो जीव है अनिवृत्तिकरण में आए हैं, इनका स्थिति बंद घटते घटते, हमने देखा ना अंत कोटि सागर से लेकर, और घटते 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 कितना हुआ, 1000 सागर तक भी आया होगा। अब वो घटते घटते 1000 का 3 सप्तमांश इतना हो गया, और वो नाम गोत्र का 1000 का 2 सप्तमांश हुआ, वेदनीय का 1000 का 4 सप्तमांश हुआ, 3 सप्तमांश, और मोहनीय का 1000 का 4 सप्तमांश। ये असंगी के बंद के समान इनका बंद हो रहा है, बस इतना बदलना है, कम होता है। बाद में कहेंगे असंगी के बदले चतुर इंद्रिय के समान होता है, यानी वो तो 100 सागर के प्रपोर्शन में आ जाएगा, फिर 3 इंद्रिय के समान है 50 सागर के प्रपोर्शन में आएगा, द्विंद्रिय के समान है 25 सागर के प्रपोर्शन में आ जाएगा, एक इंद्रिय के समान है 1 सागर के प्रपोर्शन में आ जाएगा, परंतु उसमें बीसीय किसीय चलिसी का प्रोपोर्शन यही रहेगा, उससे वो 1.5 गुना, उससे 2 गुना, इस तरह से ये प्रोपोर्शन कायम रहेगा, इतना बताना था। यानी उनका स्थिति बंद इतना फास्ट घट रहा है, इतनी बात बतानी है। अभी अंतर भीतर कुछ नहीं किया है, अनिवृत्तिकरण का संख्या बहुभाग बीत गया है, और ये स्थिति बंद इतना घट गया है, इतना फास्ट घटा है यहाँ पर आके, पहले तो थोड़ा थोड़ा घटता था, अभी इतना फास्ट घट गया है, ये उनको कहना है। एक एक अंतर्मुख में इतना इतना कटेगा, और फिर कटते कटते यहाँ तक पहुँच गया, एक ही अंतर्मुख में इतना बड़ी कटौती नहीं हुई। उसमें भी पल्ले का संख्यात्व भाग, पल्ले का संख्यात्व भाग, पल्ले का संख्यात्व भाग, ऐसे घटते रहते, मैंने कितने बार स्थिति बंधापसरण किए होंगे उसने, तब जाके यहाँ पहुँचा 1000 सागर, फिर और कितने किए तब जाके 100 सागर तक पहुंचा, ये उसका अर्थ है। हाँ, अभी आगे देखते हैं पेज नंबर 165 पर 229 की टीका। उसके पश्चात पृथक्त्व, अब यहाँ पृथक्त्व किसके लिए कहा, संख्या 1000 को पृथक्त्व कहा। कभी कभी पृथक्त्व का अर्थ 3 से 9 तक संख्या को कहते हैं, कहीं के और भी बड़ी संख्या को कहेंगे, यहाँ तो हजारों के लिए भी पृथक्त्व संख्या आती है। संख्या 1000 स्थितिबंध होने पर, स्थितिबंध होने का अर्थ है वो कटते 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 नए नए स्थितिबंध होने पर, 100 सागर को 7 का भाग देकर वहाँ 1 भाग से 2 गुना बीसीय का, यानी पहले 1000 सागर का 2 सप्तमांश, 3 सप्तमांश, 4 सप्तमांश दिया, अभी चतुरिंद्रिय के समान स्थिति बंद 100 सागर का 2 सप्तमांश, 3 सप्तमांश, 4 सप्तमांश, इस तरह से बीसीय, तीसीय और चालीसीय का बंद होगा। बीसीय ने नाम गोत्र, तृतीय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय, और चालीसीय में वो संज्वलन बन रहा है, उसकी बात है। तीन गुना तृतीय का, चार गुना चालीसीय का, ऐसा चतुरिंद्रिय के समान स्थितिबंध होता है। चतुरिंद्रिय जीव जितना स्थितिबंध मैक्सिमम कर सकता है, वैसा स्थितिबंध ये श्रेणी वाले जीव कर रहे, ये उसका अर्थ है। पंचेंद्रिय जीवों को इतना कम स्थितिबंध पहले कभी नहीं हुआ था जितना श्रेणी में होता है। जब तक श्रेणी नहीं चढ़ रहा था तब तक तो मुनिराज भी क्यों ना हो अंतकोड़ा कोई सागर का बंद कर रहे थे। इतना कटौती हुई, इतना एक इंद्रियों से भी कम हो, अभी जाने हो जाने वाला है बंदर, वो कब होगा श्रेणी में जाकर।
श्रेणी में भी नौवे गुण स्थान,
हाँ श्रेणी में भी नौवे गुण स्थान के अंत की ओर जाके इतना स्थितिबंध घटेगा, तब तक नहीं। इसीलिए जीव वहां जाकर घूमता है। ये कहते हैं गंगा जी एक इंद्रिय पर्याय बढ़िया है, क्योंकि वहां तो एक सागर का प्रपोर्शन में बंद होता है, तो बंद होता है पर वहां बंद से छूटने का कोई मार्ग नहीं है, उतना ही बनते रहो और उसी एक इंद्रिय पर्याय में घूमते रहो, तो असंख्यात उद्गल परावर्तन तक वहीं पर घूमता है, क्योंकि वहां मजा आती है, उनको अच्छा लगता है, छोटा सा स्थितिबंध बनना है। वो कम स्थितिबंध है उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वही जो एक इंद्रिय जो मरकर संगी पंचेंद्रिय में जन्म लेगा तब वो अंत कोड़ा कोड़ी से सत्तर कोड़ा कोड़ी तक सभी प्रकार के बंध करने लगेगा। ख्याल में आते हैं बात, वहां तो उसने एक इंद्रिय के योग्य बंध किया था, अब उसका अनुभव भी कम बांधा था उसने, और अनुभव कम के उदय के साथ यहाँ पंचेंद्रिय में जाते ही उत्कृष्ट अनुभव भी बांधेगा, यानी कम अनुभव के उदय में उत्कृष्ट अनुभव भी बांधेगा। ख्याल में आते हैं, वो जैसा उदय आया वैसा उसको नहीं करना, उससे ज्यादा कर रहा है। उदय तो कम अनुभव वाला है और ये यहाँ तो बंद को अधिक अनुभव वाला कर रहा है। ये निमित्त से कुछ नहीं हो रहा है, हमें तो कर्म के अधीन ही सब कुछ मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप विस्तार से पढ़ो उतनी बात ये क्लियरिटी और बढ़ती है अपनी। यहाँ तो ये बात हो रही है, यहाँ श्रेणी के परिणाम है, यहाँ तो उसका बंध अत्यंत घटते घटते असंगी के समान, फिर चौतरिंद्री के समान, तीनरी के समान, द्विंद्री के समान, एकेंद्री के समान, उससे भी घटेगा और आगे जाके, क्योंकि सागर से भी कम होकर पल्ले तक जाएगा और अंतर्मुख तक पहुंचेगा बाद में। तो यही कह रहे यहाँ पर देखो, ये तीन इंद्रियां द्विंद्री के समान ही सब, और लास्ट लाइन क्या लिखी है 165 पेज पर पहले पैराग्राफ की, हाँ तो कहते ऐसा एकेंद्री के समान स्थितिबंध होता है, यानी क्रम से असंग के समान, चतुरिंद्रिय के समान, तीनरी के समान, द्विंद्री के समान, एकेंद्री के समान स्थितिबंध होने लगता है। स्थितिबंध की कटौती सभी कर्मों में हो रही है, अकेले मोहनीय में नहीं, सभी कर्मों में। अब 230 की जो टीका है वो गाथा में संस्कृत में जो एकेंद्रिय स्थितितः लिखा है ना, वो बराबर नहीं लिखा गया है, वो ये अलग चाहिए, वो स्थिति के लिए अलग से उसका इकार करना है। ठीक है, कुछ नहीं, वो शब्द लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है वहां पर टाइप करने में। टीका पढ़ते हैं, उस एकेंद्रिय के समान स्थितिबंध के पश्चात, एकेंद्रिय के समान हो ना, अभी इसके बाद भी स्थितिबंध अपसरण तो चल ही रहा है और भी आगे घटता चला जाएगा, उसके पश्चात संख्या हजार स्थितिबंध होने पर विषय का एक पल्ल, सबसे प्रथम बार पल्ले तक पहुंचने वाला कौन सा कर्म होगा, द्वितीय वाला, नामगोत्र वाला, उसका जब पल्ले प्रमाण हुआ तब तृतीय का कितना होगा, डेढ़ पल्ले, क्योंकि 20 से 30 कितना प्रपोर्शन है तो डेढ़ गुना है, और मोहनी का कितना होगा, दो पल्ले है। तो देखो द्वितीय का एक पल्ल, तृतीय का डेढ़ पल्ल, चालीसीय का दो पल्ले प्रमाण स्थितिबंध होता है। यहाँ असंगी के सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति के धारक दर्शन मुख का हजार सागर बंद होता है, तो बीस कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति धारक नाम गोत्र का कितना होगा, यानी वो त्रैराशिक पहले की बात बता रहे थे, जो असंगी का जब हम कैलकुलेशन किया था, ये त्रैराशिक कैसे करना है उसकी बात है, वो हमने करके देख ली है। अब यहाँ जो स्थिति बंधक के भी कुछ पर्व बताएंगे हम यहाँ पर, स्थिति बंधक के चार पर्व, अनंतानुबंधी के विषय योजन में स्थिति सत्व के चार पर्व देखेंगे। नाम तो वही हो गए यहाँ पर, अभी हम ये स्थिति बंधक के चार पर्व देखने जा रहे हैं। पहले पुस्तक में से पढ़ेंगे और फिर उसको बात यहाँ पर भी देखेंगे। देखो 166 पेज पर आते हैं, ये चार्ट लगाना है। अंत कोड़ी, वो कोड़ी बीच का निकाला है, वो जो ब्लैक किया है वो अंत कोड़ी चाहिए, उसमें कर लेंगे, अपने अपने चार्ट में कर लेंगे। नहीं, चतुरिंद्रिय, तीनिंद्रिय, द्विंद्रिय भी देखेंगे। हाँ, वो तो मैंने आपको बता दिया था, मैंने यहाँ से पढ़ा नहीं, आपको बता दिया। पहले असंगी जैसा होगा और घटेगा तो चतुरिंद्रिय जैसा होगा, और घटेगा तो तीनिंद्रिय के जैसा होगा, और घटेगा तो द्विंद्रिय के जैसा होगा, और घटेगा तो एक इंद्रिय के जैसा, और भी घटेगा, पल्ले तक पहुँचेगा ना, घटते 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 पल्ले। ये वो बीच वाले कुछ स्टेप्स बता रहे हैं। हर बार तो पल्ले का संख्या द्वारा इतना ही कटौती होगी, करते 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 विशिष्ट पोजीशन पहुंचा, वो बताने के लिए कहेंगे उनके नाम लिए असंगी के वगैरह, डायरेक्ट हजार सागर भी कह सकते थे। ये तो समझाने के लिए उनके नाम लेकर समझा रहे कि इतना घटता हुआ उनका स्थिति बंद हो रहा है। अब यहाँ 221 गाथा की टीका पढ़ेंगे। देखो 166 पेज पर, ये सब स्थिति बंधापसरण के प्रकरण में ही आ रहा है। सभी कर्मों का स्थिति बंध इतना घट रहा है तो घटते घटते कहाँ तक पहुंचा है उसकी बात यहाँ हो रही है। देखो ये यहाँ भी चार पर्व बताएंगे, पहले वो टीका पढ़ रहे अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बंध से लेकर, क्योंकि जब अपूर्वकरण में आया था, अपूर्वकरण में तो अंत कोड़ा कोड़ी तो था ही, इवन पहले में भी स्थिति बंधापसरण तो अधकरण से शुरू हुआ है, जहाँ अंत कोड़ा कोड़ी सागर का था तो वहां से लेकर जब तक पल्ले मात्र स्थिति बंध होता है तब तक स्थिति बंधापसरण का प्रमाण, बंधापसरण यानी एक अंतर्मुख के बाद कितनी कटौती होती है उस कटौती का प्रमाण, पल्ले का संख्यात्व भाग, पल्ले के संख्यात्व भाग मात्र होता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर पल्ले तक, यानी कितने बार उसने स्थिति बंधापसरण किए होंगे आप इमेजिन करो, एट ए टाइम पल्ले का संख्या तो भाग ही कटेगा, तो पल्ले प्रमाण कटने के लिए संख्या बार तो किया, एक सागर कटने के लिए तो 10 कोड़ा कोड़ी बार पल्ले करो और उसके और संख्या गुणा करो, चार बार भी लेते तो 40 कोड़ा कोड़ी बार तो वो हो गया एक सागर कटने के लिए। अब अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर पल्ले तक आया है, यानी कितने बार उसने स्थिति बंधापसरण की हुई, तो इतने अंतर्मुहूर्त भी गए ना वहां पर। ख्याल में आती है बात, सूक्ष्मता जो है वो अंतर्मुहूर्त भी कितने छोटे छोटे हो चुके, और ऐसे स्थिति बंधापसरण के काल में एक स्थिति कांडल घात होता है और उतने ही काल में अनुभाग कांडल घात हजारों होते हैं। देखो अभी यहाँ पढ़ते, ये पहला यहाँ जो बताया है अंत कोड़ा कोड़ी सागर से लेकर पल्ल्य, ये स्टेप्स बताए बीच वाले जो हमारी सुनते हैं, पल्ले तक आए तब तक कटने का प्रमाण कितना है, एट ए टाइम पल्ले का संख्या का भाग, हर बार इतना 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 कटौती होते होते अभी नया स्थिति बंध कितना हुआ, तो पल्ले प्रमाण, पल्ले के बाद जब पल्ले तक पहुंचा है इसके बाद कटौती कितनी होगी, पल्ले का संख्या बहुभाग की कटौती होगी और संख्या का भाग प्रमाण उसका बंद होगा। बीसी यानी नाम गोत्र जब पल्ले बंध है उसके बाद उसका नेक्स्ट जब स्थिति बंधापसरण हुआ तो उसका बहुभाग प्रमाण उसके बंध कट गया और नया बंध हुआ वो पल्ले के संख्या के भाग प्रमाण हुआ। उसके बाद और नया होगा तो जो संख्या का भाग है उसका भी बहुभाग चला जाएगा और उसका भी संख्या के भाग प्रमाण उसका बंध होगा, यानी अभी स्थिति बंध और फास्ट घटेगा। पहला पर्व कहाँ से कहाँ, पहला पर्व का नाम है अंत कोड़ा कोड़ी सागर, वहाँ से पल्ले तक, वहाँ स्थिति बंध अपसरण का प्रमाण कितना है, पल्ले का संख्या द्वारा, पल्ले के बाद वो दुरापकृष्टि नाम का जो आगे वाला आने वाला है वहाँ तक कितनी कटौती होगी, हर बार पल्ले का संख्या बहुभाग, संख्या बहुभाग का अर्थ होता है, मान लेते हैं हम पल्ले के पांच भाग कहेंगे तो उसमें चार पंचमांश भाग वो बहुभाग हुआ और एक पंचमांश भाग वो एक भाग हुआ, उतना स्थितिबंध होगा और बहुभाग इतना अपसरण होगा, कटौती होगी। ख्याल में आती बात? पहले पल्ले प्रमाण था, पहले कटौती का प्रमाण कितना था? संख्यात्वा भाग था। अब जो बंद है वो संख्यात्वा भाग रहेगा और कटौती संख्या दो भाग हो जाएगा, ये उसका अर्थ होगा। यहाँ पढ़ते देखो, अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थितिबंध से लेकर जब तक पल्ले मात्र स्थितिबंध होता है तब तक स्थितिबंधापसरण का प्रमाण पल्ले के संख्यात्वे भाग मात्र, ये समझ में आई बात? यहाँ तो स्थितिबंध कितना होता है वो लिखा है और यहाँ एक एक बार में कटौती कितनी होती है उसका प्रमाण दिया। अंतर्मूर्त के बाद उसके एक ही समय में ड्रॉप डाउन होती है, जो उसका स्थितिबंध कटौती होती है, कटौती एक समय में हुई पर जो कटौती होने के बाद उतना का उतना स्थितिबंध अंतर्मूर्त के लिए होता है, फिर अंतर्मूर्त के पश्चात फिर कटौती होगी, फिर उतना का उतना स्थितिबंध होगा। अनुभाग में हर समय कटौती हो रही, वैसा नहीं है। अनुभाग के बंध में हर बार हर समय कटौती होती है, स्थिति बंध में अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के बाद कटौती होती है। पल्ले मात्र स्थिति बंध से लेकर दुरापकृष्टि स्थिति होती है वहां पल्ले को संख्यात का भाग देकर बहुभाग मात्र स्थिति बंधापसरण, यहाँ अपसरण का प्रमाण पल्ले का संख्यात बहुभाग। अब ये दुरापकृष्टि क्या है उसको भी देखेंगे। पल्ले स्थिति के अनंतर ये तो हो गया, पुनश्च दुरापकृष्टि से लेकर जब तक संख्यात हजार वर्ष मात्र स्थितिबंध होता है, ये दुरापकृष्टि क्या क्या होता है? ये ऐसा स्थितिबंध है वो अंतिम पल्ले का संख्यात अभाग है, इसके बाद जो बंध होगा तो पल्ले का असंख्यात अभाग प्रमाण होगा, क्योंकि कटते कटते पल्ले का संख्यात अभाग संख्या, जैसे चौथा भाग भी पल्ले का संख्यात अभाग है और पल्ले का बीसवा भाग भी संख्यात अभाग है, पल्ले का हजारवा भाग वो भी संख्यात अभाग है, पल्ले का करोड़ोवा भाग वो भी संख्यात अभाग है, ऐसे करते करते जो अंतिम संख्यात अभाग है उसके बाद असंख्यात अभाग होने वाला है तो अंतिम है उसको कहेंगे दुरापकृष्टि, इसका नाम है दुरापकृष्टि। अब इसके बाद ये जो यहाँ से लेकर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण यहाँ उसका स्थितिबंध होगा और हर बार पल्ले का असंख्यात बहुभाग कटेगा, तो कब तक? असंख्यात वर्षों की स्थिति अभी होती है दुरापकृष्टि से लेकर, असंख्यात वर्ष है पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण इसका स्थितिबंध हो रहा है। जब पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थितिबंध होता है तो कटौती कितनी हो रही? तो बहुभाग कटौती हो रही। ये चार स्थितिबंध के जो वेरिएशन बताए, अलग अलग स्टेप्स बताए, दुरापकृष्टि का ऐसा होता है अर्थ कि वो अंतिम संख्यात्वा भाग है, जैसे संख्या पल्ले का संख्यात्वा भाग प्रमाण स्थितिबंध होगा, कटौती बहुभाग। अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, पल्ले प्रमाण स्थितिबंध था, अब बहुभाग यानी पांच भाग करेंगे तो चार पंचमांश कटौती हुई और पल्ले के पंचमांश भाग प्रमाण वहाँ स्थितिबंध हुआ। अब पल्ले का पंचमांश भाग प्रमाण स्थितिबंध हुआ, अब उसका भी और कटौती करो, वो पंचमांश भाग के और पांच भाग करो तो पल्ले का पच्चीसवा भाग बंद होगा और चौबीस पच्चीस अंश वो तो निकल गया। इस तरह से उसको करते रहो तो संख्यात्वा भाग संख्यात्वा, देखो उसका पच्चीसवा भाग भी संख्यात्वा भाग कहलाएगा, सौ भाग करेंगे तो भी संख्यात्वा भाग कहेंगे, हजारवा भाग तो करोड़वा भाग, जो संख्या संख्या से भाग देंगे उसको संख्यात्वा भाग कहेंगे। ऐसे होते होते जो अभी उसके बाद अगर बहुभाग निकालेंगे उसमें से तो वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग प्रमाण हो जाएगा। आपका प्रश्न है असंख्यात्वा भाग और संख्यात्वा भाग कैसे समझना, संख्यात किसको कहना? दो ये मिनिमम संख्यात है, तीन चार पाँच छः हजार करोड़, अभी कितने करोड़ों कोड़ा कोड़ी जो करो वो सारे संख्यात के भेद हैं। कहाँ तक? मिनिमम असंख्यात से एक कम, जिसको कहीं उत्कृष्ट संख्यात, वो उत्कृष्ट संख्यात तक ये संख्यात के सारे भेद हैं। उसमें एक और ऐड करो तो जघन्य परिता संख्यात वाला असंख्यात का भेद होता है। ये संख्यात असंख्यात और अनंत अलग अलग नामों से उसके जो प्रकार बताए जाते हैं वो सारे जीव कांड पुस्तक में है अपने, इसको कैसे पहचानना क्या है।
तो जब
कहीं पढ़ा है वो आपको समझाने के लिए छोटी संख्या लेकर पढ़ा है, वो 57 करो 10:1000 करो वो 10:10000 करो 10 करोड़ कोड़ा कोड़ी कुछ भी करो वो सारा संख्या है, क्योंकि उत्कृष्ट संख्या भी इतनी बड़ी संख्या है, उसको समझने के लिए हम छोटी छोटी संख्याएं लेकर उसको समझाते हैं। कहीं कहीं 16 को भी असंख्यात करके समझाया है और 15 को उनको उत्कृष्ट संख्या कहेंगे। ये छोटी संख्या लेकर जो समझाया जाता है उसको कहेंगे अंक संदृष्टि। बड़ी संख्याएं समझने में तकलीफ होती है इसलिए छोटी संख्या को लेकर जो समझाते हैं उसको कहेंगे अंक संदृष्टि, और जो यथार्थ फिगर्स समझाए जाते हैं उसको कहेंगे अर्थ संदृष्टि। जो अर्थ संदृष्टि क्लास में है ना उसको कहेंगे अर्थ संदृष्टि। संदृष्टि यानी वो उसके सिंबल उसके चिन्ह करके उसको समझाया जाता है। बाकी चर्चा हम शाम को करेंगे, अभी यहाँ रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान।